आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और विकसित भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर होगी विशेष चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में कहा, राजनीतिक दलों के बीच चुनाव आयोग नहीं करता कोई भेदभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रिजेंसी अस्पताल और हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन, कहा प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों को मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग का रंगारंग कार्यक्रमों के बीच हुआ उद्घाटन, मेरठ ने जीता पहला मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे।
श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है, जिससे कि उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्ष से इस बारे में संपर्क किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बोर्ड के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण यह चुनाव कराना पड़ रहा है। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा होगी, इसे लेकर कल सूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के बाद अमेरिका से भारत लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन और लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला का कल नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ वी नारायण के साथ उनके परिवार के लोगों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु ने नासा के एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व किया था। शुभांशु भारत के प्रथम अंतरिक्षयान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। इसे अगले वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके लिए सभी दल समान हैं और वह राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।
कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपी से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। लखनऊ के ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर कल रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि यह स्टेशन आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
इस बिल्डिंग के पूरा होने की अवधि को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 100 इयर्स इस स्टेशन के पास होगा। लगता ही नहीं है कि स्टेशन 100 साल पुराना है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जिस तरीके से इस विजन से इस स्टेशन को बनाया गया रहा होगा उसको रियली अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि कितने दूरदृष्टि के साथ इस स्टेशन का आर्किटेक्ट सोचा, इसको डेवलप किया, बनाया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रीजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार तथा नेपाल सहित क्षेत्र के लगभग 5 करोड़ आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक उत्कृष्ट केंद्र साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है।
अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे। जनता सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो और वह सुविधा उपलब्ध हो रही है।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर खानिमपुर में टोरेंट समूह के हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से प्रतिवर्ष 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, इस ऊर्जा के संरक्षण के लिए हम पूरी तरह संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में UP T20 लीग के तीसरे संस्करण की कल रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही शुरुआत हुई। पहले मुकाबले में मेरठ मैवरिक्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को 86 रनों से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता के अंतर्गत आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर बाद 3 बजे गोरखपुर लॉयंस और काशी रुद्राक्ष के बीच होगा, जबकि शाम को 7:30 बजे लखनऊ फॉलकंस और नोएडा किंग्स की टीम आमने सामने होगी। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के क्रम में कल सिद्धार्थनगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन में राष्ट्रभक्ति का भाव बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। श्री पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश की जनता इस उत्सव को पूरे उमंग और उत्साह के साथ मना रही है। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण विभिन्न जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, अयोध्या, बलिया और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कल फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा देगी। उधर उन्नाव में गंगा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसे देखते हुए कल जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। शाहजहांपुर में भी जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने खन्नौत नदी के हनुमत धाम और गर्रा नदी के अजीजगंज तटबंध पहुंचकर जल स्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ राहत व बचाव कार्यों की पूरी तैयारी रखने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में भेजने के निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से लौटे अंतरिक्ष यात्री सुभाष शुक्ला और विकसित भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर होगी विशेष चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में कहा, राजनीतिक दलों के बीच चुनाव आयोग नहीं करता कोई भेदभाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रीजेंसी अस्पताल और हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में 5.5 करोड़ लोगों को मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग का रंगारंग कार्यक्रमों के बीच हुआ उद्घाटन। मेरठ ने जीता पहला मुकाबला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।